श्रोतर षट श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीवीडी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, शिष्य गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में 11वें स्कंद के 17वें अध्याय पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे और इसके 37वें श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। कृपया आप सब दोहराइए, नहीं आप बैठ जाइए, आपको दिखेगा नहीं तो दिखेगा नहीं श्लोक। श्लोक नंबर 11वां स्कंद 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 37। अथानन्तरमावेक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागमः गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद्गुर्वनुमोदितः। अथानन्तरमावेक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागमः गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद्गुर्वनुमोदितः। अथानन्तरमावेक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागमः गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद्गुर्वनुमोदितः। अथ इस प्रकार, अनंतरम इसके पश्चात, आवेक्षण गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की इच्छा से यथा समुचित जिज्ञासित अध्ययन करके आगमः वैदिक साहित्य गुरवे गुरु को दक्षिणाम दक्षिणा दत्वा देकर स्नायात ब्रह्मचारी को स्नान करके कंघा करना तथा सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। गुरु गुरु द्वारा अनुमोदितः अनुमति दिए जाने पर, इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जो ब्रह्मचारी अपनी वैदिक शिक्षा पूरी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह गुरु को समुचित दक्षिणा दे, स्नान करे, बाल कटाए और उचित वस्त्र इत्यादि धारण करे, तब अपने गुरु की अनुमति लेकर वह अपने घर को जाए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरव श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धुदीनबन्धुजगत्पते गोपेशगोपिकाकान्तराधाकान्त नमस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस 17वें अध्याय में प्रारंभ में उद्धव जी ने प्रश्न किए और फिर भगवान ने वर्णाश्रम कैसे प्रारंभ हुआ, पहले नहीं था फिर कैसे प्रारंभ हुआ, इसका वर्णन किया। और उसके बाद उन्होंने समझाया कि वर्णाश्रम गुणों के आधार पर होता है। और फिर अब वर्णन ब्रह्मचारी का उन्होंने किया, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, इन आश्रमों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोग अब तक 36वें श्लोक तक ब्रह्मचारी जीवन का वर्णन सुन चुके हैं कि ब्रह्मचारी जीवन कैसे है। और अब इस श्लोक से जो हमने अभी पढ़ा 37वां, अब इससे प्रारंभ करके भगवान आगे वर्णन गृहस्थ जीवन का कर रहे हैं इस अध्याय के अंत तक, और फिर अगले अध्याय में वानप्रस्थ और सन्यास जीवन का वर्णन होगा। तो ये गृहस्थ जीवन के क्या कर्तव्य हैं, क्या है गृहस्थ जीवन, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा आज करेंगे। और इससे पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे जो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के प्रति की हैं।
सर्वशास्त्राभिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधु मत संगी मद्गुरो मन महाधना मन निस्तार कमद भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचो चतह कर हान मुंच कदाचिन माम प्रेम नारित कंठयो सुरा।
सो यहां भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता है, अर्थात वैदिक सभ्यता के अनुसार प्रारंभ से ही बालकों को गुरुकुल में भेजा जाता है जहां वे ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, और फिर करीब 25 वर्ष की जब आयु हो जाए तो उस समय वे एक निर्णय लेते हैं जीवन में, बहुत बड़ा निर्णय होता है कि वे आगे गृहस्थ बनना चाहते हैं या संन्यास की तैयारी करना चाहते हैं। सो दो दो मार्ग हैं। एक मार्ग है अनुभव का, दोनों मार्ग साक्षात्कार के हैं। जैसे हम कुछ सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास से हमें साक्षात्कार हो जाता है और फिर हम जीवन की सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं। ये एक मार्ग है जो ब्रह्मचारी जीवन का है, जिसमें ब्रह्मचारी श्रवण करते हैं शास्त्रों से, उसका पालन करते हैं अपने जीवन में कड़ाई से, जो शास्त्र में नियम दिए गए हैं इत्यादि, और उनको सुनने से और उनके पालन करने से उन्हें साक्षात्कार हो जाता है कि हमें आवश्यकता नहीं है जीवन के कष्टों को झेलने की, और उस संन्यास के लिए तैयारी करते हैं ताकि जीवन की सच्ची सफलता को प्राप्त कर सके। ये ब्रह्मचारी। लेकिन कुछ ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं जो श्रवण, अभ्यास और बीच में अनुभव करते हैं साक्षात्कार से पहले, जिनका वर्णन यहां भगवान कर रहे हैं। तो गुरुकुल में रह लिए, अब उन्हें निर्णय लेना है क्या करना है, गृहस्थ बनना है या संन्यास में। उन्होंने शास्त्र में सुना है कि बहुत कष्टदायक है भौतिक जीवन, भोग का जीवन त्यागना है, उद्देश्य केवल कृष्ण की प्राप्ति है, लेकिन फिर भी वे अनुभव करना चाहते हैं उस कष्ट का, तो इसलिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो जहां उन्हें अनुभव होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं गृहस्थ जीवन में, जिससे व्यक्ति तुरंत साक्षात्कारी बन जाता है, सही है कि नहीं। सो इतने अच्छे अनुभव होते हैं जो ब्रह्मचारियों को कभी हो ही नहीं सकते, तो उससे वो तुरंत साक्षात्कारी बनता है और फिर आगे जीवन की सफलता के लिए चलता है। तो मूल बात दोनों आश्रमों में साक्षात्कार और जीवन की सफलता को प्राप्त करना। तो अब यहां भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी ये निर्णय लेता है कि मुझे गृहस्थ बनना है तो कोई बात नहीं, क्या करना चाहिए, भगवान कह रहे गुरु से अनुमति लेनी चाहिए सबसे पहले, गुरु अनुमोदितः, गुरु से अनुमति लेनी चाहिए, गुरु को दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए और फिर घर के लिए जाना चाहिए यहां से अनुमति लेकर। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जब वो घर में जाए तो उसे विवाह करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आश्रम में नहीं हैं, घर में रह रहे हैं और घर में विवाह किए बिना रह रहे हैं तो वो जीवन सही जीवन नहीं है, वो को बड़ा निंदित माना गया। इसीलिए हम देखते हैं चैतन्य लीला में जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना पहला विवाह किया लक्ष्मी प्रिया देवी से, और फिर लक्ष्मी प्रिया देवी लीला समाप्त कर दी अपनी, तो महाप्रभु अकेले थे उस समय, विवाहित मतलब घर में रह रहे थे, संन्यास नहीं लिया था लेकिन पत्नी नहीं थी। और जब शची माता ने उनसे कहा कि मैंने एक लड़की देखी है विष्णु प्रिया, बड़ी अच्छी है, तुम्हें विवाह करना चाहिए, सो महाप्रभु ने स्वीकार किया और उस समय उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा मैं जब तक घर में हूं पत्नी होनी चाहिए। तो इसके दो अर्थ थे, पहला वे समाज में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर रहे थे कि घर में बिना विवाह किए नहीं रहना, अगर बिना विवाह किए रहना है तो आश्रम में रहो, ये बीच की स्थिति कोई नहीं है, निंदनीय स्थिति है, बिना ब्रह्मचारी हो न गृहस्थ हो स्वतंत्रता से रह रहे हो तो ये स्थिति ठीक नहीं। तो महाप्रभु पहली चीज इसके द्वारा ये दिखला रहे थे कि अगर घर में है तो पत्नी होनी चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही घर में रहते हैं और वो अपने आप को ब्रह्मचारी मानते हैं। हाँ, सो घर में रहने वाले ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी होते हैं। तो प्रभुपाद भी इस बात को कहा करते थे, प्रभुपाद कहते थे कि वी डोंट वॉन्ट बैचलर डैडीज, तो हमें बैचलर्स नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मचारी चाहिए। तो एक एक बात महाप्रभु ये सिखलाना चाहते थे हमें, और दूसरी बात इस वाक्य से कि मैं जब तक घर में हूं पत्नी होनी चाहिए, वो एक थोड़ा सा हिंट दे रहे थे, एक आगे आने वाली स्थिति को बता रहे थे कि जब तक घर में हूं मतलब बहुत जल्दी संन्यास लेने वाला हूं। तो महाप्रभु ने भी स्वीकारा, तो इसीलिए उन्हें विवाह करना चाहिए। भगवान कहते हैं विवाह किससे करना चाहिए, गुण समान हो, भगवान कहते हैं सदृश गुण समान होने चाहिए गुणों में। दूसरा भगवान कहते हैं कि उसकी उम्र कम होनी चाहिए। तो जो पुरुष हैं विवाह के समय, आज भी ये सब पालन किया जाता है और ये सब शास्त्र से, देखिए लोग पालन करते हैं जानते नहीं है लेकिन है शास्त्र से। तो भारत की सभ्यता शास्त्र पर आधारित, यही चीज बाहर नहीं है क्योंकि वे शास्त्र पर आधारित नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो जिससे विवाह करे पत्नी वो कम उम्र की होनी चाहिए, तो पहले समान गुणों की हो और कम उम्र की हो, और ऐसे कोई कार्य, ऐसे कोई विवाह निंदनीय नहीं माना जाता, भगवान कहते हैं तो विवाह करना चाहिए। और फिर अब विवाहित जीवन में है तो क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं विवाहित जीवन में है अध्ययन करें, दान करें और तपस्या करें, तीन चीजें आवश्यक हैं। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपह, इन तीनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इन तीनों को तो इवन ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये तीनों करने हैं। तो गृहस्थों के लिए विशेषता कहा गया है कि वे अध्ययन करें, वैदिक अध्ययन करें या यज्ञ दान तपह, तो उसको करें। और साथ साथ भगवान वर्णन करते हैं कि अगर एक गृहस्थ भोग प्रवृत्ति को त्याग कर जीवन में तपस्या को महत्व देता है तो वो असीमित आनंद का अनुभव कर सकता है। बहुत सुंदर बात भगवान ने कही कि गृहस्थ जीवन भोग के लिए नहीं बना है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि गृहस्थ जीवन में लाइसेंस है भोग करने का, भगवान कह रहे हैं गृहस्थ जीवन तपस्या का जीवन है, तपस्या के लिए बना। और बहुत सुंदर बात, तो मन में प्रश्न आता है, तो भगवान कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन में है, जो ब्राह्मण है उन्हें तपस्या करनी चाहिए। तो एक प्रश्न आता है क्यों तपस्या करनी चाहिए, ये गृहस्थ जीवन तो हमने आनंद के लिए लिया था, वहां भी तपस्या करनी पड़े। तो तपस्या का अर्थ क्या है, स्वेच्छा से असुविधा को स्वीकारना। तो यहां वर्णन किया गया है, यह प्रश्न किया जा सकता है कि अपने जीवन निर्वाह हेतु एक ब्राह्मण स्वेच्छा से असुविधा को क्यों स्वीकार करे, आराम से रहे घर में क्यों करे। तो इस श्लोक में श्री भगवान बता रहे हैं कि प्रगत मानव जीवन गंभीर तपस्या के लिए होता है, शूद्र इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। आध्यात्मिक प्रगति से मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर दिव्य आनंद को प्राप्त होता है और इस नाशवान भौतिक शरीर में व्यर्थ ही निमग्न रहना छोड़ देता है। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की कम से कम आवश्यकताएं स्वीकार करते हुए भौतिक शरीर से अनासक्त रहे। ब्राह्मण जन कष्टप्रद जीविका स्वीकार करके भी ये नहीं भूलते कि ये भौतिक शरीर का वृद्ध होना, रुग्ण होना, कष्ट में मरना बंधा है। इस तरह प्रगत ब्राह्मण सतर्क तथा दिव्य रहते हुए जीवन के अंत में भगवत धाम जाते हैं, जहां उसे असीम आध्यात्मिक आनंद मिलता है। जो भक्तगण, तो अब भक्तों का वर्णन आ रहा है कि क्या करना चाहिए, भक्तों को भी ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो जो भक्तगण 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रसार करने में लगे रहते हैं, वे वैराग्य इंद्रिय तृप्ति के स्तर से परे हैं, क्योंकि वे हर वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। शुद्ध भक्त केवल श्री भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति पाने हेतु ही भोजन करता है। हमें ध्यान से सुनना चाहिए। वह 56 भोग हो या रूखा सूखा, अपने शरीर के निमित्त ग्रहण नहीं करता, किंतु श्री भगवान के लिए कुछ भी अच्छा भी भोजन, अच्छा भोजन भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मण श्री भगवान का यश फैलाने के लिए अहर्निश कार्य नहीं करता, उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छा भोजन करना नहीं चाहिए। अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं तो अच्छा भोजन नहीं करना चाहिए। किंतु विरक्त वैष्णव, उपदेशक अर्थात प्रचारक, किसी भी जाति के पवित्र लोगों का आमंत्रण स्वीकार कर सकता है और उनके घर आशीर्वाद हेतु जाकर उनके द्वारा प्रदत्त अच्छा भोजन ग्रहण करता है। इस प्रकार वे कभी कभी नास्तिकों तथा निर्विशेषवादियों को परास्त करने के लिए पौष्टिक भोजन कर सकता है। अच्छा भोजन करना चाहिए, क्योंकि लड़ना है मायावादियों से। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति श्री भगवान का भक्त नहीं हो लेता, तब तक वह अत्यंत योग्य ब्राह्मण नहीं बन सकता। और भक्तों में से जो लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने भगवद गीता के 18वें अध्याय में पुष्टि की है। सो यहां भगवान वर्णन कर रहे हैं कि तपस्या का जीवन होना चाहिए। अगर आप गृहस्थ जीवन में भी हैं, भक्त हैं और ब्राह्मण समाज में हैं, तो आपको ये तपस्या का जीवन स्वीकारना चाहिए। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि उसे बहुत संतुष्ट होना चाहिए, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे। और भगवान कहते हैं कि जैसे एक नाव होती है, कोई डूब रहे हैं उनको बचा लेती है आकर, इसी तरह मैं नाव के रूप में आता हूं बचाने के लिए। किनको? जो लोग भक्तों की सहायता कर रहे हैं। भक्त बन गए तो आपकी रक्षा है ही, अगर आप भक्त नहीं बन सकते तो कम से कम भक्तों की सहायता कीजिए। भगवान कह रहे उनको भी बचाने के लिए मैं आऊंगा। तो बहुत सुंदर वर्णन है, और थोड़ा पढ़ना चाहेंगे तो यहां है, श्री भगवान ने यह बतलाया है, जय श्री गोनटराज दयाल निताय की। श्री भगवान ने यह बतलाया है कि ब्राह्मण तथा भक्तगण किस तरह जीवन सिद्धि पाते हैं, वैसे ही सिद्धि उन्हें भी प्रदान की जाती है जो अपनी भौतिक संपत्ति का उपयोग भक्तों तथा ब्राह्मणों की दरिद्रता दूर करने में करते हैं। यद्यपि मनुष्य विषय भोग का जीवन बिताने के लिए भगवत भक्ति की उपेक्षा कर सकता है, किंतु श्री भगवान की सेवा में अपनी गाढ़ी कमाई अर्पित करके वह अपनी स्थिति सुधार सकता है। साधु पुरुषों द्वारा संपन्न की जाने वाली कठिन तपस्या को देखकर पुण्यशाली मनुष्य को उनके सुख साधन की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरह समुद्र में गिरे हुए निराश लोगों को एक नाव बचा लेती है, उसी तरह श्री भगवान उन लोगों को उबारते हैं जो भौतिक आसक्ति के सागर में निराश होकर गिर गए होते हैं। मतलब उन लोगों को भगवान उबार रहे हैं जो भौतिक सागर में गिरे हुए हैं, निराश हो गए, बहुत इंद्रिय भोग में लगे हैं। तो उनको क्यों उबारते हैं? यदि वे ब्राह्मणों तथा भक्तों के प्रति दानशील बने रहते हैं, अर्थात भक्तों की वो सेवा में रत रहते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन किया। फिर भगवान क्षत्रियों का वर्णन करते हैं कि क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, राज्य करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, जो क्षत्रिय का कार्य है। और फिर भगवान वर्णन करते हैं कि कभी कभी वर्णाश्रम पद्धति में अगर ऐसी स्थिति हो कि वर्ण बदलना हो तो बदला जा सकता है। So, भगवान कह रहे हैं कि पहले ब्राह्मण का वर्णन करें कि चलिए ब्राह्मण का कार्य क्या है, यज्ञ कराना, पठन पाठन इत्यादि। अगर वो उसके द्वारा अपनी जीविका नहीं चला पा रहा है उस कार्य से, ब्राह्मण के कार्य से, तो भगवान कहते हैं वो वैश्य बन सकता है, वो वैश्य का कार्य ले सकता है। और अगर वैश्य के कार्य में भी उसको अपना जीवन नहीं चला पा रहा है तो तलवार उठाकर क्षत्रिय बन सकता है। लेकिन ब्राह्मण को कभी भी शूद्र नहीं बनना चाहिए, भगवान कह रहे। शूद्र मतलब नौकरी करना। तो भगवान कह रहे कि या तो वो वैश्य बन जाए, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, या फिर वो क्षत्रिय बन जाए, लेकिन कभी भी शूद्र नहीं बनना है, नौकरी नहीं करता है ब्राह्मण कभी नहीं। फिर क्षत्रिय, और ये इमरजेंसी के लिए है केवल। और फिर क्षत्रिय वो क्या कर सकता है, क्षत्रिय अगर नहीं कार्य हो रहा वो वैश्य बन सकता है या फिर ब्राह्मण का भी कार्य कर सकता है क्षत्रिय। और जो वैश्य है वो शूद्र बन सकता है, शूद्र का कार्य कर सकता है। और जो शूद्र है वो अपने नहीं चला पा रहा तो वो बहुत और निम्न कार्य होते हैं, जैसे ये मैट बनाना या डलिया बनाना, ये सब वो कार्य कर सकता है। वो शूद्रों से भी निम्न लोगों के माने जाते हैं, तो वो कार्य कर सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं जैसे ही स्थिति ठीक हो जाए वापस अपने कार्य पर आ जाना चाहिए, बने नहीं रहना चाहिए। तो ये बात भगवान कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में बहुत जरूरी है वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, देवताओं की पूजा करना। तो यहां भगवान पंच महायज्ञ का वर्णन कर रहे हैं, या पंच सून यज्ञ जिन्हें कहा जाता है। पंच सून मतलब पांच प्रकार के पाप, और उनसे परे जाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है। तो पांच प्रकार के यज्ञ ये गृहस्थों को रोज करने चाहिए। कौन कौन से यज्ञ हैं? पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ, और पांचवा है मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ कहा जाता है। तो ये पांच प्रकार के यज्ञ गृहस्थ को रोज करने हैं। सो पहला क्या है? ब्रह्म। और क्यों करने हैं? क्योंकि कार्य करते हुए बहुत से अपराध हो जाते हैं। सांस ले रहे हैं, प्राणी को मार दिया, झाड़ू लगाई, कीटाणुओं को मार दिया, पानी गर्म किया, कीटाणुओं को मार दिया, बहुत सारे कार्य करते हैं। और दूसरा कारण ये पांच महायज्ञों का है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो ऋण के साथ जन्म लेते हैं, देव ऋषि भूतातृणाम पितृणाम, तो इनका ऋण चुकाने के लिए ये पांच यज्ञ करने पड़ते हैं। तो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मतलब ऋषि मुनियों का ऋण उतारने के लिए वेदों के अध्ययन को गंभीरता से किया जाए, पहला यज्ञ। तो रोज वेद अध्ययन करना चाहिए गृहस्थ जीवन, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा यज्ञ होता है देव यज्ञ, देवताओं की संतुष्टि के लिए यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि देवता हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, सूर्य दे रहे हैं, अग्नि आ रहा है, पानी आता है, हवा आती है, ये सब देवताओं से आ रहा है, तो उनके लिए यज्ञ किया जाता है। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, जो पितृ लोक में हैं, उनको तर्पण किया जाता है, तो तीसरा होता है यज्ञ। चौथा भूत यज्ञ, भूत यानी जीवात्माएं, अन्य जीव, मनुष्यों को छोड़कर, तो अन्य प्राणियों को थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए, उनको खाने के लिए देना चाहिए, विशेषतः गाय की सेवा करनी चाहिए, नहीं तो भी अन्य प्राणियों के लिए भी कुछ करना चाहिए। और पांचवा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ। तो जहां गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि अतिथियों का स्वागत करे और अन्य मनुष्यों की सहायता करे, तो ये साधारण ये जो यज्ञ उन लोगों के लिए हैं जो पूर्ण रूप से भक्ति में नहीं लगे हैं, क्योंकि जो भक्ति में लगे हैं उनके लिए तो कहा गया देव ऋषि भूतातृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मनः यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्ता, कि जिस व्यक्ति ने शरण ले ली है कृष्ण की वो सारे ऋणों से मुक्त हो गया, देवताओं का, ऋषियों का, भूत अन्य जीवों का, संबंधियों का, सारे मनुष्यों का, जो भी है उनका हम ऋण से मुक्त हो गए। इसलिए भक्तों को आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे वैसे भी रोज शास्त्र पढ़ते ही हैं, सेवा करते ही हैं। तो ये जो यज्ञ हैं ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो भक्ति में नहीं हैं। तो फिर आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कैसे एक गृहस्थ को किस प्रकार घर चलाना चाहिए। अब गृहस्थ है तो उसको तो घर चलाना होगा, परिवार चलाना होगा। तो भगवान कहते हैं कि उसको अपने परिवार को, अपने संतान इत्यादि को चलाना, परिवार चलाना है तो ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, धोखा देकर धन ना कमाए, प्रामाणिकता से धन कमाए, और जितने उसकी क्षमता है उसके अनुसार उस सेवा करें। भगवान कहते हैं उसे भौतिक दृष्टि से कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए, और जो भी प्रसन्नता है, जो मिल रहा है उसको आनंद, उसको क्षणिक देखना चाहिए। बहुत सारे आनंद होते हैं पारिवारिक जीवन में, लेकिन ये भी जानते हैं लोग ये क्षणिक होते हैं, फिर चले जाते हैं। सो हर आनंद को क्षणिक देखना चाहिए। और बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं कि अगर आप घर में रह रहे हो तो कैसे रहना चाहिए, या घर वालों को कैसा समझना चाहिए। तो जो घर के लोग हैं उनको आपको यात्रियों की तरह समझना चाहिए। जैसे हम लोग कभी कहीं जाते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, साथ में कुछ यात्री होते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, और फिर जब वो यात्रा समाप्त होती है सब अपने अपने घर, कोई कोई जानता नहीं कहाँ, यात्रियों की तरह मानना चाहिए। और खुद कैसे रहना चाहिए, भगवान कह रहे हैं कि जो संबंधी उनको यात्री माने, और खुद कैसे रहना है घर में, एक अतिथि की तरह रहना, गेस्ट है आप बस, नहीं रहेंगे तो आसक्त हो जाएंगे घर से, परिवार से, इसलिए ऐसे रहना है। और फिर भगवान कहते हैं कि घर में रहे एक अतिथि की तरह, स्वामित्व का भाव ना हो, और उसे अगर पुत्र है पत्नी का ध्यान रखने के लिए तो संन्यास ले लेना चाहिए। और ये भी भगवान कहते हैं कि उसे पवित्र स्थानों में जाना चाहिए, धाम यात्रा करनी चाहिए। और अगर वो नहीं करता है, भगवान कहते हैं कि ये मोह में पड़ जाएगा, बंधन में पड़ जाएगा। तो क्या बंधन होगा, किस तरह का बंधन होगा, क्यों होगा, परिवार से आसक्त हो जाएगा, इच्छाएं उसे हमेशा विचलित करती रहेंगी, और हमेशा धन को वो भोग करना चाहेगा, और काम वासना तीव्र होगी, और सदैव दुख में रहेगा। और भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता जीवन में, और वो ऐसे ही मरेगा। भगवान कह रहे हैं किस पर ध्यान करेगा, अपने रिश्तेदारों पर, अपने संबंधियों पर, अपने धन पर, तो मरते समय भी वो संतुष्ट नहीं होगा, यही चीजें ध्यान करेगा, और अंत क्या होगा उसका, फिर अपने आप को नीचे की ओर ले जाए। सो इसीलिए पारिवारिक जीवन क्या है, गृहस्थ जीवन, इसको जरा अच्छे से समझना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन सबसे पहले ये एक आश्रम है। आश्रम मतलब जहां आश्रय लिया जाता है। सो भक्तों को, अब जो हम वर्णन कर रहे हैं वो भक्तों के लिए कर रहे हैं जो भक्ति में लगे हैं, कैसे उन्हें रहना है। तो सबसे पहली चीज उन्हें मानना है कि ये आश्रम है, आश्रय लेना है किसका, भगवान का। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे हैं, ऐसे गृहस्थ भी आश्रम में रहे, वो भी आश्रम है। तो आश्रम में क्या होता है, आश्रम में आप देख रहे हैं, आश्रम में टीवी नहीं होता, राइट, लेकिन इंटरनेट तो होता है, टीवी की आवश्यकता ही नहीं, आजकल इंटरनेट आ गया। तो खैर, आश्रम मतलब वो भावना, आश्रम में सरल जीवन हो, उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति। सो सबसे पहले उसको आश्रम मानना है। तो आश्रम मानकर क्या करना है, अंदर ही अंदर भगवान की भक्ति को बहुत तीव्र करना। भले आप बाहरी दृष्टि से सारे कार्य कर रहे हो, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका ध्यान रख रहे हो, लेकिन अंदर इंटरनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए भक्ति में। ये गृहस्थ जीवन है। और जितने अन्य आश्रम हैं उनको सब पालन करना, ये गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है। तो उनका पालन करना चाहिए, भगवान केंद्रित जीवन रहना चाहिए उनका। तो ऐसी सारी प्रवृत्तियां जो भगवान से दूर ले जा रही हैं उनको त्याग देना चाहिए। तो क्या कर्तव्य हैं गृहस्थ जीवन के? गृहस्थ जीवन का पहला कर्तव्य है सेवा। चारों आश्रमों की सेवा करनी है उन्हें, तीन की तो करनी करनी है, अपने जो आश्रम है उसकी भी तो करनी है, इसलिए चारों आश्रमों की सेवा होनी चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में पहला, गृहस्थ जीवन का आधार है सेवा, उन्हें सेवा करनी। तो सेवा का भाव क्या होना चाहिए? गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो किस भाव में सेवा होनी चाहिए? सबसे पहले अनासक्त रूप में सेवा करनी चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेवा को कर्तव्य मानकर करना चाहिए। तो पहली चीज, हम आसक्त ना हो सेवा करते समय किसी भी चीज से, और दूसरा, सेवा को कर्तव्य मानकर करना है कि हमारा कर्तव्य है इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। और फिर साथ साथ कृष्ण भावनामृत का सही ज्ञान होना चाहिए गृहस्थ को, और फिर उसे ऐसी सेवा में लगना चाहिए। और उसे त्याग, यज्ञ, तो त्याग क्या कर सकता है वो? प्रयास करना चाहिए कि उसका जीवन अन्यों के लिए हो, अपने लिए ना, ये गृहस्थ जीवन में आवश्यक है। तो इस तरह से गृहस्थ जीवन में रहे, उसे वही स्वीकार करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचाम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा। जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करना है, उससे ज्यादा नहीं। और उसे सतत कृष्ण के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए, हो सके तो 24 घंटे। आगे वर्णन है कि उसे वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए और भगवान की, ऑफकोर्स भगवान की सेवा और वैष्णवों की सेवा। तो जो भी धन वो इकट्ठा करता है किसी भी कार्य से, तो उससे उसे वैष्णवों की और भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और जितने भी उसके ऋण हैं उसको भक्ति के द्वारा चुका देना चाहिए, जैसे हमने अभी बताया देव ऋषि भूतापत्र निणाम पितृणाम। बहुत सरल उसका आचरण होना चाहिए, असत संग को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। सुगृहस्थ जीवन में असत संग आना बहुत सरल होता है, क्योंकि बाहर जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो असत संग करना पड़ता है। प्रयास करना चाहिए गंभीरता से, जितना हो सके ससत संग को त्याग देना चाहिए। और साथ ही साथ गुरु को स्वीकारना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, और देवी देवताओं का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ करने हैं, जैसे हमने बताया पंच सुना यज्ञ नहीं करता है भक्त क्योंकि भक्ति में लगा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि देवताओं का अनादर करता। देवताओं का, हम लोग देवताओं की पूजा नहीं करते उनको भगवान मानकर, लेकिन उनकी आदर जरूर करते हैं क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं वो, तो इसलिए उनका हमें आदर करना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत आवश्यक है कि उसे वैष्णव आचार या वैष्णव आचरण सदाचार का पालन करना चाहिए, ताकि वो पारिवारिक जीवन में रहते हुए अपराध ना कर बैठे। तो उसे वैष्णव एटिकेट्स को बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात, उसे भक्ति और पुण्य कार्यों में भेद पता होना चाहिए। पारिवारिक जीवन में बहुत ऐसा होता है कि किसी पुण्य कार्य की ओर हमारा ध्यान बहुत जाता है कि हम ये कर लें, वो कर लें, कोई रीति रिवाज का पालन कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। भक्ति को महत्व देना है, भक्ति की श्रेष्ठता को जानना है। रीति रिवाज ये केवल कृष्ण तक लाने के लिए है, सारे अन्य जितने भी भक्ति, जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो केवल कृष्ण तक लाने के लिए हैं। और इसीलिए कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्यों भगवान ने कहा धर्म को त्यागने के लिए सारे? क्योंकि क्योंकि सारे धर्म उन तक लाने के लिए, और जब आप उन तक आ गए हैं फिर आपको क्या आवश्यकता है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो गृहस्थ जीवन में ये जो रीति रिवाज हैं या जो अन्य कर्म कांड से संबंधित धार्मिक कार्य हैं, तो इनको हमें दूर रखना चाहिए, भक्ति को श्रेष्ठता देनी चाहिए। और इस तरह ईश्वर केंद्रित जीवन अगर कोई गृहस्थ जीता है तो वो भगवान को प्रसन्न करता है और अंत में भगवान के धाम जा सकता है, अन्यथा इसी जगत में बना रहेगा और कष्टों में पड़ा रहेगा। तो ये वर्णन सब करने के बाद अब अगले अध्याय में भगवान वर्णन करेंगे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के नियमों का, तो इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं इस पर? जो ब्रह्मचारी है वो चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो तो ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्माचरति, कई परिभाषा पर्याप्त है। एक्चुअली ब्रह्माचरति थी ब्रह्मचारी, ये आधार है ब्रह्मचारी जीवन का। तो ब्रह्मचारी उसके लिए बाकी और सारी चीजें कही जा सकती हैं, वो कैसे होगा, क्या होगा, किस वर्ण में होगा, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के बच्चे गुरुकुल में जाते हैं। तो ब्रह्मचारी ये आधार है कि उसका मूल कार्य होना चाहिए ब्रह्म का आचरण। तो इसीलिए ये परिभाषा नहीं है, ये आधार है ब्रह्मचारी जीवन का, उसके बिना ब्रह्मचारी हो नहीं सकता। बाकी सब चीजें इसको सपोर्ट करने के लिए, इस एक मूल उद्देश्य को सहयोग करने के लिए। आप विवाह नहीं करते क्यों? इस उद्देश्य को सहयोग करें कि ध्यान केंद्रित कृष्ण पर हो। आप इधर उधर की चीजों पर ध्यान नहीं देते, बाहर के स्थान में नहीं जाते, ताकि आपका ध्यान ब्रह्म आचरित हमेशा रहे। तो इसलिए ये उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। यही प्रश्न था आपका और कुछ प्रश्न? ओके, अगर कोई शूद्र भी है लेकिन वो अपने सारे कर्तव्य करते हुए भगवान की भक्ति में लगा हो, भगवान के मतलब ब्रह्मचारी के रूप में आचरण कर रहा हो, भगवान को पाने का प्रयास कर रहा हो, तो क्या उस पर भी ये परिभाषा लागू होती है या नहीं? राइट, भगवान भगवत गीता में कहते हैं स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम, तो वो भी परागति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विभाजन है ये गुण कर्म के अनुसार है। So, कर्म होने चाहिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति हो, भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा भीर शुंभ यवना खसाद, ये सब शूद्रों से नीचे के लोग हैं। सो यन्य च पापा यदपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै, तो इसलिए भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी भी स्तर पर हो अगर उसका पालन कर रहा है तो ये परिभाषा उसके लिए लागू है, तो निश्चित है। तो उसमें ये फर्क, ये एक वैदिक सभ्यता के अनुसार उन तीन वर्णों के लिए था केवल, क्योंकि उस समय शूद्र जो थे वो उसका पालन ही नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति हो, वैसे तो सारे ही शूद्र हैं, कलौ शूद्र संभवा, लेकिन फिर भी किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, अगर वो भगवान को पाने का प्रयास कर रहा है तो उसके लिए बिल्कुल सुविधा है और वो उसी समान है। जैसे माता देवहूति कहती हैं अहो बच्छोपचह तो गरियान, वो कुत्ता खाने वाला व्यक्ति गुणगान करने योग्य है अगर यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अगर आपका नाम उसकी जिह्वा पर है, तो फिर वर्ण आश्रम तो नहीं, भक्ति इन सबसे परे। ठीक है, जगदीशानंद प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा।
प्रभु जी आपने बताया कि वर्णाश्रम प्रणाली पहले नहीं थी, यानी ये तो वर्णाश्रम प्रणाली सनातन काल से चली आ रही होगी।
ओके, वर्णाश्रम प्रणाली हमने बताया कि नहीं थी, लेकिन ये तो सनातन काल से चली आ रही है। भगवान बताते हैं इसके प्रारंभ में कि सतयुग में केवल एक ही वर्ण था, हंस। सारे इतने स्तर ऊंचे स्तर पर थे कि ये विभाजन नहीं था, ये तो त्रेता युग में आकर हुआ। सो दोनों चीजें सही हैं कि पहले वर्णाश्रम नहीं था, और फिर मतलब वर्णाश्रम सनातन प्रणाली है और पहले नहीं था, ये दोनों सही है। अब दोनों कैसे सही हो सकते हैं, या तो सनातन नहीं है या अभी पहले नहीं था बाद में आया, ये गलत है। नहीं, दोनों सही है, क्योंकि ये युग भी बार बार आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सतयुग पहली बार आया है उसके बाद पहले कभी नहीं आया। तो हर बार जब ये चक्र होता है सतयुग त्रेता द्वापर इत्यादि का, तो फिर उस समय प्रारंभ में नहीं होता, फिर प्रकट हो जाता है वर्णाश्रम प्रणाली। तो उस दृष्टि से शाश्वत है, सनातन है, और क्योंकि हर समय नहीं प्रकट होती, उस दृष्टि से वो प्रारंभ होती है। ठीक है प्रभु। ओके, और कोई प्रश्न है किसी के? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल।